तुंग विद्या जी का हम वर्णन करते हैं। इनके पिताजी का नाम रुचि भानु है। वृषभानु महाराज के 8 अलग भाई हैं, 4 उनसे बड़े हैं, 4 उनसे छोटे हैं। उनके पिताजी का नाम मही भानु है, और मही भानु के पिताजी का नाम क्या है, कुछ तो कुछ होगा ना कुंज भानु उनके दादाजी का नाम है। तो मही भानु जी को 9 पुत्र हुए और बीच के पुत्र वृषभानु महाराज, जिनको बरसाने का राजा बनाया गया। और वृषभानु महाराज स्वयं सूर्य के अवतार हैं, भानु। तो उनके भाई जो है उनका नाम है रुचि भानु और उसके पत्नी का नाम है भामा, और इन दोनों की पुत्री का नाम है तुंग विद्या। सभी अष्ट सखियों में सबसे क्या कहते हैं सीनियर हैं जन्म से। इनका बर्थडे कभी है, सबसे पहले होता है तृतीया के दिन, अष्टमी के दिन राधा रानी का है ना, तो तृतीया के दिन तुंग विद्या का जन्मदिन है। इनका वर्ण जो है वो गौर वर्ण है, चंद्र की तरह वर्ण है इनका, और वस्त्र भी सफ़ेद रंग के पहते हैं, बहुत सुंदर। इनके कुंज का नाम अमित कला कुंज है, और वो कुंज का वर्ण जो है ना वो अरुण वर्ण है। आपको सब लोग को पता है कि अरुण वर्ण का अर्थ क्या होता है, अरुणोदय झाला सूर्योदय झाला, दोनों एक ही है कि अलग अलग है, एक ही है, नहीं सॉरी सर वो अलग है। अरुण जो है वो सूर्य के सारथी हैं, अरुण जो है वो गरुड़ के छोटे भाई हैं, नहीं बड़े भाई है सॉरी, गरुड़ जी के बड़े भाई हैं, और वो विकलांग हैं क्योंकि उनको उसके माता जी ने पहले ही उनको इम्पेशेंट होकर उनका अंडा तोड़ दिया था, तो आधे ही विकसित हुए, ऊपर से विकसित नीचे से लुड़े। तो उन्होंने अपनी माता को शाप दिया, तुमने इतना जल्दबाजी में मुझे जन्म देने का प्रयास किया, अब मैं ऐसा हो गया तो तुम जीवन भर दासी बन के रहोगी अपनी सौतन की। तो फिर गरुड़ जी और उनकी माता बहुत लंबे समय तक दासी बने रहे, किसके, कद्रु देवी के। फिर 500 साल वेट किया, उसके बाद में गरुड़ जी का जो अंडा था वो अपने आप फूट गया, उसमें से गरुड़ जी का जन्म हुआ। तो ये बात कहाँ से निकली, अरुण। तो अरुण जी अपनी माता को बंधन भी किया, शाप भी दिया, और वहाँ से गए और जाके सूर्य देव के सारथी बने। तो सबसे पहले जो लालिमा छाती है ना, सुबह अभी कभी हमारा एक शौक है, हम रोज जाकर खड़े रहते हैं और देखते हैं कैसे सूरज धीरे 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 ऊपर आ रहे हैं, कैसे पहले कुछ भी नहीं है, केवल गोल्डन कलर है, फिर कुमकुम कलर है, फिर थोड़ा गोल्डन है, फिर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ऐसे कर सारा सीनरी मैं देखते रहता हूँ। तो वो जो है वो अरुण का उदय है, अरुण का उदय गोल्डन रंग प्रकाश देता है, और जब सूर्य आते हैं तो तेज प्रकाश देता है, उसको सूर्योदय कहते हैं। तो से सब बात निकली थी, अरुण का वर्ण जो है वो तुंग विद्या देवी का है, हरे कृष्णा। जो हमने बताया उसको उपाख्यान कहते हैं, और मेन आख्यान जो है वो तुंग विद्या जी का है। इनका प्रिय वाद्य क्या है, तानपुरा। तानपुरा और वीणा में क्या अंतर है, तानपुरा को वो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, उसको सापो सा सा देते रहते हैं, वो गाने वाले के सा से उसको मिलाते हैं, फिर वो सापो सा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, वो कुछ भी किसी भी राग में गाते रहेंगे तो भी वो सापो सा सा चलते रहते हैं, और वीणा में सारे सारे धुन बजाते रहते हैं। तो तानपुरा में ये बहुत कुशल है, तानपुरा ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बैकग्राउंड में बजाना, ऐसा नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल में तानपुरा की मशीन चलती है, जब हम शिक्षाष्टक प्रार्थना गाते हैं सुबह तो साफ सा सा चलते रहते हैं। ये सखी जो है तुंग विद्या देवी, हरे कृष्णा, तुंग विद्या देवी जो है वो गाने में बहुत कुशल है, गान कला में बहुत ज़्यादा कुशल है, और गाकर और नृत्य में भी बहुत कुशल है, और गाकर और नृत्य करके प्रिया प्रीतम को रुझाने की उसकी बहुत सुंदर कला है। शी इज़ वेरी एक्सपर्ट इन प्लीजिंग राधा एंड श्याम सुंदर बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर। इनकी 3 सहायिका हैं, धन्या मंजरी, अशोक मंजरी और मंजुला मंजरी। एक अलग है मंजुलाली, वो डिफरेंट है, ये मंजुला मंजरी अलग है। और देखो इसमें और एक विशेषता है कि ये सभी विद्याओं की खान है, ऐसी कोई विद्या नहीं कि उसको पता नहीं है, सभी विद्याओं को जानती है वो, और प्रधान तो सेवा गीत वाद्य है, नित्य है, लेकिन रस शास्त्र, नीति शास्त्र, नाट्य शास्त्र, समस्त गंधर्व विद्या, अर्थात क्या, गायन विद्या, गंधर्व लोग गायन में एक्सपर्ट रहते हैं, वो उधर देवताओं में अलग लोग होते हैं, एक गाने वाले एक्सपर्ट देवताओं में से, एक नाचने वाले एक्सपर्ट और एक वाद्य बजाने में एक्सपर्ट, गंधर्व गाने में, किन्नर नृत्य में, गंधर्व किन्नर और तीसरे कौन है, संगीत वाले, भूल गया मैं अभी, कोई बात नहीं। रस शास्त्र का मतलब क्या होता है, भगवान के प्रेम के विषय में एक समय पर रस की उत्पत्ति होती है, और रस शास्त्र बहुत गहरा है, बहुत डीप है, उसमें वो बहुत एक्सपर्ट है। नीति शास्त्र का मतलब है कि संस्कृति, हमारे सब लोगों के जीवन में संस्कृति बहुत ज़रूरी है, केवल जप करेंगे और झूठ बोलते रहेंगे और प्रणाम नहीं करेंगे और वस्त्र ठीक से नहीं पहनेंगे जैसे भी रहेंगे तो वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं, भक्ति और संस्कृति साथ साथ चलनी चाहिए। इसलिए हमारे मंदिर में क्या सिखाते हैं, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव शिष्टाचार क्यों सिखाते हैं, क्योंकि वैष्णव शिष्टाचार से भक्ति में वृद्धि होती है, भक्ति में प्रगति करने में सहायता होती है। एक समय तो महाराज ने ऐसे कहा था कि अगर आपको दो प्रकार के भक्त दिए जाएंगे, जो व्रत करने में, एकादशी व्रत करने में, सौषठ माला करने में, शास्त्र पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं है, सब झगड़ते रहते हैं, उनका कुछ किससे बनती नहीं है, हमेशा बुरा बुला कहते रहते हैं, और एक व्यक्ति है कि एकदम आचार विचार में, शिष्टाचार में एक्सपर्ट है लेकिन जप में बहुत ढीला है, कभी 16 करेगा कभी 12 करेगा कभी करेगा ही नहीं, तो आप दोनों में से किसको पसंद करोगे, ऐसा महाराज जी को पूछा गया, तो महाराज ने कहा मैं जिसके कल्चर बहुत बढ़िया है उसको पसंद करूँगा, क्योंकि तो जिसका कल्चरल बैकग्राउंड अच्छा है वो आगे जाकर भक्ति को स्वीकार कर सकता है, लेकिन जिसका कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पार्श्वभूमि अच्छी नहीं है वो आगे जाकर अटकेगा, कहीं ना कहीं फंसेगा और गिर जाएगा। तो ये संस्कृति जो है उसको नीति शास्त्र कहते हैं, यानी दुनिया में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, सासू का बहू के साथ, बहू का सासू के साथ, देवर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता, बुजुर्गों के साथ, ये सब इम्पोर्टेंट है। केवल भक्त भक्त में भक्तों भक्तों और कोई कर्तव्य को निभाता नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है वो। विशेष करके बुजुर्गों की सेवा, ये हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है। पुराने ज़माने में वृद्धाश्रम, हॉस्पिस कुछ होता नहीं था, सब घर पर ही होते थे। आजकल के ज़माने में भी केवल अमीरों के माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, गरीबों के माता पिता घर ही रहते हैं, कभी उनको भेजते नहीं बाहर, लो पैसा लो देखभाल करो, हमारे खिटखिट नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं है। तो वो जो संस्कृति है वो बरसाना आई कैम्प का एक पर्पज़ ये भी है कि संस्कृति को हम क्या कहते हैं, मराठी कहते हैं जोपासने, यानी कल्टिवेट करने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि कैंप से माध्यम से क्यों ना हो, ड्रेस कोड, बिहेवियरल कोड, मैन वीमेन कोड, ये सब कुछ अच्छी तरह से होना चाहिए। ये एक दिव्य आध्यात्मिक भक्तिमय जीवन का एक उदाहरण होना चाहिए जिसमें सेवा भी हो रही है, जिसमें प्रसाद भी पाया जा रहा है, नाम जप भी किया जा रहा है, कीर्तन भी किया जा रहा है, कथा भी हो रही है, यात्रा भी हो रही है, यज्ञ भी हो रहा है, भगवान नाम का कीर्तन भी किया जा रहा है। ये संस्कृति है, इसके ऊपर आपकी भक्ति की प्रगति निर्भर है। केवल तिलक धारण करके दीक्षा लेके भक्ति नहीं होती है, वो तो शुरुआत है केवल, लेकिन शिष्टाचार से आगे बढ़ती है। तो ये नीति शास्त्र कहते हैं उसको, वो डायरेक्टली भक्ति शास्त्र नहीं है लेकिन वो बहुत भक्ति के लिए पोषक है, पूरक है, पूरक सपोर्टिव। उसके आगे नाट्य शास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भगवान की लीलाओं का मंचन करने के लिए नाट्य शास्त्र बहुत आवश्यक है। उसके भी विद्यालय होते हैं, कैसे अभिनय करना होता है, कैसे बोलना होता है, आवाज़ को ऊपर चढ़ाव नीचे कैसे करना होता है, डायलॉग कैसे बोलना होता है, कैसे भाव से उसको किरदार के साथ में एक रूप होकर कैसे करना है, नाट्य शास्त्र। और मैंने बताया गांधर्व शास्त्र यानी गाने का शास्त्र, संगीत मंच, वाद्य मंच, रास मंच यानी प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग ये परफॉर्म करते हैं, डांस, गायन, संगीत सभा, समाज कहते हैं यहाँ पर उसको। ये सब कुछ जो है, ये जितनी भी संगीत की यहाँ पर, या रास मंच, नाट्य मंच, वाद्य मंच, गान मंच, जितने भी स्टेज परफॉर्मेंस है, ये सारे तुंग विद्या के निर्देशन में होते हैं। तो शी इज अ बिग डायरेक्टर ऑफ ऑल द स्टेज परफॉर्मेंस। और इनका एक प्रमुख भाव है, वो है विप्रलंब, विप्रलम्ब का बहुत ज्यादा अनुभव करती है। हरे कृष्णा। तो ये हो गया तुंगदेवी का वर्णन। तुंगदेवी को आप सब लोग प्रणाम करो। वो परमेष्टी सखी, आठ सखी जो है राधा कृष्ण की, उसमें से एक सखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमको उन्होंने सब बुलाया हमारे अपने पास आशीर्वाद देने के लिए, बड़ी कृपा है उनकी। एक और यहाँ पर लीला है जिसमें आपको दिखाया ना, रत्न कुंड दिखाया आपको दूर से, और सामने श्याम शिला, श्याम पहाड़ी, दो लीला यहाँ पर है। एक लीला है कि बहुत लंबी लीला है वो, लेकिन राधा रानी के घर से सगाई के रूप में, सगाई के क्या कहते हैं, शगुन के रूप में मोती, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम मोती नंदगांव भेजे गए। फिर नंदगांव के लोगों को, मतलब माता पिता को समस्या हुई कि अरे इतने तो बढ़िया हमारे पास मोती है नहीं, तो रिटर्न गिफ्ट में क्या भेजेंगे, इतने तो है नहीं, तो चिंता कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो उस समय कन्हैया जी आते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें तो बहुत ईजी है, इन्हीं मोतियों को बो देते हैं, फिर मोती आ जाएंगे खेत से। तो वो ठाका मार के हंसते हैं, बाद में फिर वो छुप चुराते हैं मोती, क्योंकि तो माता देती नहीं, क्योंकि ऐसे थोड़ी बकवास करते हैं कि बच्चे को मोती देंगे वो जाके मट्टी में डालेगा, इतने कीमती मोती वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन वो चुरा के लेके जाते हैं घर के आंगन में, पीछे बो देते हैं और बहुत बढ़िया खेती होती है इसमें, सब एक एक मोती से 500 मोती उत्पन्न हो जाते हैं। हरि बोल। तो वो है मोती कुंड, वहां पर मोती बोकर भगवान ने मोती उगले, फिर वो मोती बैलगाड़ी में भर भर के उसकी माला बनाकर बरसा ने भेज दिए, रिटर्न गिफ्ट। फिर राधा रानी ने डवारा में आकर उसको बोए और मोती उगले, रत्न हीरे उगले, हीरे मेरे देश की धरती, हाँ अगले हीरे मोती। यहाँ पर राधा रानी ने मोतियों को बोकर हीरों को उगला है। अभी बताओ आप श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण भगवान ने मोतियों से मोती उगाला, राधा रानी ने मोती दिया तो उसको हीरे निकाले, तो वो है रत्नकुंड। और रत्नकुंड बना फिर उसके बाद, वहां पर हीरे उगले। तो ये रत्नकुंड फिर राधा कृष्ण की और गोपियों की और सब लोगों की बहुत अच्छी प्रिय क्रीड़ा स्थली बनी, लीला स्थली बनी। और गोपियां यहाँ पर बहुत सुंदर स्नान करने के लिए वगैरह आते थे, जल क्रीड़ा करने के लिए। तो ये जो दिखाया ना आपको यहाँ पर, ये श्याम पहाड़ी है, यहाँ पर कृष्ण आकर बैठते थे और अनेक कारण से आते थे। कभी आते थे विरह में व्याकुल होकर राधा रानी को देखने के लिए, कभी आते थे उनको चिढ़ाने के लिए, उनको खिजाने के लिए, ताने मारने के लिए, पत्थर कंकड़ मारने के लिए। लेकिन जब भी आते थे वहाँ पर, जब बैठते थे ना, तो वो जहाँ पर बैठते थे वो पत्थर की जो बड़ी शिला है वो नीली हो जाती थी, और आज भी वो शिला नीली है पूरी तरह से, उसको श्याम शिला कहते हैं। तो डायरेक्टली वहाँ से दूर से ये जो है ना रत्नकुंड का दर्शन है। वास्तविक मैं आपको बताता हूँ, कलयुग में क्या होता है ना, सब स्थान नष्ट होते हैं, फिर वो कोई संत आके दोबारा बनाते हैं, लेकिन वो उसी साइज का नहीं बनाते, सांकेतिक या लक्ष्य क्या कहते हैं उसको, लाक्षणिक बनाते हैं, सिंबॉलिक। वास्तव में ये जो पहाड़ है ये रत्नकुंड के किनारे पे है, और रत्नकुंड के किनारे पे बैठकर वो उनको छेड़ते थे, और आज वो बहुत दूर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उधर है, इतना दूर था, उसी पर यहाँ से वहाँ तक रत्नकुंड है। मेरा भाग्य था कि मैंने इसमें भरा हुआ जल भी देखा है बहुत सालों पहले, अभी तो सूख गया है, वो क्रिकेट का ग्राउंड हो गया वो, कभी किसी की कृपा हुई तो जल आ जाएगा दोबारा। बहुत पवित्र स्थान है ये, इसको भी बज्रनाम ने संवारा है रत्नकुंड को। तो श्याम शिला, और एक उसका लीला ऐसी है कि यहाँ पर बैठकर जब भी विरह का अनुभव करते थे तो कहते कि डब 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 अश्रु बहते थे उनके, इसलिए गांव का नाम पड़ा डबारा। ये हो गई एक लीला, उसके आगे सुनो। ये राधा रानी श्याम सुंदर सखा और सखियों का गुड्डा गुड्डी खेल का बहुत प्रिय स्थान है। वो दरवाजा आपके लिए बंद है क्या, वो खोल देंगे उसको, खुलवा दो। वो जो है वो यहाँ के भगवान के राधा रानी के गुड्डा गुड्डी खेल का यहाँ पर मेमोरी है। वो बहुत सुंदर सुंदर लीला है उनकी, जैसे वृषभानु महाराज जो है राधा रानी को गुड्डा देते हैं, ललिता के पिताजी भी उनको गुड्डा देते हैं, तो उल्टा है, श्याम सुंदर जी के पास में गुड्डी है और राधा रानी के पास गुड्डा है और वो दोनों का विवाह करते हैं यहाँ पर। तो विवाह के उत्सव में देखो यहाँ फोटो लगाया हुआ है, वो देख लो जाते वक्त, चित्रपट है। तो विवाह के समारोह में राधा रानी जो है वो गुड्डे को अपने गोद में लेकर घोड़े में बैठ कर आती है बारात में, और जो श्याम सुंदर की गुड्डी है वो तो शर्मीली है ना, वो तो गुड्डा जो होता है वो जैसा दुल्हा होता है तो घोड़े में बैठ के फटाके फूटते हुए आता है, और गुड्डी जो है वो पालकी में आती है पूरा घूंघट ओढ़ के गुप्त रूप में आती है। तो कृष्ण उनको अपने जो प्रिय सखियाँ हैं उनके साथ में पालकी में उठा कर लाते हैं और राधा रानी घोड़े पर बिठा कर आके फिर यहाँ विवाह होता है उनका। फिर वो बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया का खेल है यहाँ पर। वहाँ पर वो गुड़ियाओं का जो घर है जहाँ पर गुड़ियाओं को रखते हैं प्रेम से, वो उनके लिए गुड़िया नहीं है, वो साक्षात है, साक्षात जीवित व्यक्ति है। तो गुड़िया हमको लगता है लेकिन वो उसी तरह से उनका लाड़ दुलार करती है और वो गुड़ियों का जो आदान प्रदान है वो प्रेम से चलते रहता है। तो इसमें आपको वो गुड़ियों का कमरा मिलेगा छोटा बड़ा, और उनके खिलौने मिलेंगे बहुत सारे, तोता बहुत सारे, पक्षी बहुत सारे, गेंद बहुत सारे, ऐसे खिलौने वाले आवाज़ करने वाले बहुत सारे खिलौने मिलेंगे आपको उसके अंदर। और उसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का चित्रपट भी रखा है। अभी एक एक लीलाओं को एक घंटा लगेगा समझाने के लिए। एक चित्रपट ऐसा है कि राधा रानी को फूल बिनना था तो फूल बहुत ऊंचे थे, तो कृष्ण भगवान ने अपना कंधा दिया, बोला कंधे पे चढ़ो, तो कंधे पे चढ़कर आराम से निकाल रही है, अचानक निकल जाते हैं तो डाली को पकड़ते हैं और लटकते रहते हैं, और श्याम सुंदर जी बहुत तालियां मार के हंसते हैं, फिर उसको उतारते हैं। फिर एक चित्रपट है जिसमें नंदगांव में एक पक्षी को संदेश उसके गले में बांधकर बरसाने भेज रहे हैं, और वहाँ पर राधा रानी तोता के गले में मैसेज बांधकर नंदगांव भेज रही है, ऐसे चित्रपट हैं। एक में ऐसा चित्रपट है कि राधा रानी कृष्ण जो है वो ढूंढते ढूंढते आते हैं राधा रानी को, तो उनको ना हर पाती से, हर डाली से, हर फूल से, हर फूल हर फल से राधा 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 यही नाम सुनाई पड़ता है। तो वो ऐसा सुन रहे हैं, इसे मैं तो राधा रानी को देखने आया था, सब जगह पे यहाँ पर राधा रानी का नाम उच्चारण हो रहा है। तो ऐसा उधर लिखा है, पत्ते पे भी राधा लिखा है, फल पे भी राधा लिखा है, पेड़ के भी, सब जगह राधा राधा लिखा है, और वो कृष्ण भगवान जो है सुन रहे हैं, राधा रानी भी सुन रही है। ऐसे ऐसे सुंदर लीलाओं का चित्रपट इसमें निकाला हुआ है, बहुत सुंदर चित्रपट। और ये भी चित्रपट उसमें है कि रत्नकुंड में गोपियाँ स्नान कर रही है और श्याम शिला पे कृष्ण बैठे हैं और वहाँ से उनको निहार रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।